वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान राज्य गद्दी पर विराजमान हो गए। भगवान ने बड़े प्रेम और स्नेह के साथ बंदरों को विदा किया, विभीषण आदि को विदा किया, सबके अंत में विदा निषाद राज को किया, क्योंकि निषाद राज अयोध्या के बहुत नजदीक थे। जो दूर थे उनको पहले विदा किया। भगवान राम जी महाराज जब राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, उस समय में सारी अयोध्या में स्वाभाविक एक आनंद की लहर दौड़ गई। किसी के अंदर किसी के प्रति कोई बैर भाव की भावना ही नहीं थी। भगवान का ऐसा विचित्र प्रभाव था कि अयोध्या के अंदर कोई विषमता का वातावरण ही देखने में नहीं मिलता। लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार कर्तव्य का संपादन करते थे, वेद मार्ग के अनुसार चलते थे और उनके अंदर कभी कोई शोक नहीं, कोई रोग नहीं, कोई भय नहीं। मर्यादा पर चलने वाले को कहीं किसी प्रकार से कोई भय होता भी नहीं। तीन प्रकार के ताप होते हैं। शरीर संबंधी बीमारी होती है उसको दैहिक ताप बोलते हैं, और कोई ऊपर से प्रकृति की तरफ से कोई प्रकोप होता है वो दैविक होता है, और अपने अंदर कोई राग द्वेष से, हर शोक से, सुख दुख होता है वो अंदर का ताप, भौतिक ताप होता है। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। शरीर संबंधी होता है वो आधि भौतिक होता है, इंद्रियों संबंधी होता है वो आध्यात्मिक होता है, और प्रकृति से होने वाली जो देवी शक्तियों से होने वाला संताप है वो दैविक होता है। जैसे चलते 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 रास्ते में कहीं बिजली गिर गई। अब बिजली गिर गई तो क्या हो गया भाई? भाई बिजली गिर गई तो ये आदि दैविक ताप है। चलते चलते कोई वृक्ष का फल हमारे सिर पर पड़ गया, चोट लग गई, दैविक ताप है। मन में विचार करते 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 बड़ी भारी खिन्नता, उदासी आ गई, ये है आध्यात्मिक ताप। और शरीर में बीमारी लग जाए ये आदि भौतिक ताप। भगवान के राज्य में इन तीनों में कोई किसी प्रकार से देखा नहीं जाता था। लोग अपने परिवार से अपना प्रेम का शुभारंभ करते थे, परिवार से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, मोहल्ले से प्रेम करो, फिर ऐसे करते ही होंगे। परस्पर में सब लोग अपने अपने प्रेम को संभालते थे कि भाई किसी के साथ हमारा प्रेम है वो न टूट जाए। चारों ही वर्ण बड़े सावधानी से चलते थे। जिनके मन में भगवान की भक्ति होती थी ऐसे नर नारी परम गति के अधिकारी के रूप में माने जाते थे। ऐसा राम जी के राज्य में नहीं होता था कि बाप तो बैठा है और बेटा मर गया। अल्प मृत्यु नहीं कवनीय पीरा। राम जी के राज्य में ऐसा भी नहीं है कोई तो खूब आराम से बादाम की चक्की खा रहा है, किसी को रोटी नहीं मिलती है, ऐसा भेदभाव नहीं था। कोई दरिद्री नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मूर्ख नहीं, कोई कुलक्षण नहीं, कोई दंभी नहीं। सब नर नारी अपने अपने में बड़े आनंद और संतुष्ट थे। भगवान के राज्य में ध्यान से सुने, प्रत्येक घर के अंदर ब्राह्मण लोग कथा वार्ता करते रहे, घर घर में कथाएं होती रहती थी। जिस प्रकार से अन्न न बनने पर, माना आज रसोई नहीं जगे, चूल्हा नहीं जगे तो घर अपवित्र माना जाता है, इसी प्रकार से घर में जब तक सत्संग न हो तब तक वो घर की पवित्रता नहीं आती, घर में पवित्रता नहीं आती, घर अपवित्र है। सत्संग हो, पूजन हो, भजन कीर्तन हो, नाम स्मरण हो, वो घर पवित्र होते हैं। अयोध्या में ऐसा कोई घर नहीं था कि जहां पर किसी प्रकार से कोई सत्संग वगैरह नहीं होता हो। हे गरुड़ महाराज, इतना आनंद रहता था भगवान के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, कि लोगों के एक दूसरे के विपरीत स्वभाव टकराते नहीं थे। इतना लोगों पर भगवान का प्रभाव और सत्संग का प्रभाव, मेरा स्वभाव खराब है और आपका स्वभाव अच्छा है, विपरीत है, विपरीत होते टकराता नहीं था, दोनों का स्वभाव टकराता नहीं था। मेरे स्वभाव से आपको दुख नहीं होता था। भगवान का राज्य बहुत दूर तक था। हे गरुड़ महाराज, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा के राज्य के लिए कहा जाए कि अयोध्या का राज्य 7 समुद्र तक था, ये तो भगवान की महिमा में कलंक लगाना है। परंतु हे गरुड़ जी महाराज, जब भगवान लीलाई करने पर आ गए हैं तो ऐसा तो कहना ही पड़ेगा। भगवान की महिमा का वर्णन शारदा और शेष नाग नहीं कर सकते। लोगों की ऐसी पवित्र वृत्तियां थी, अपनी पत्नी के अलावा सबको वे मातृ और भगिनी बुद्धि से देखा करते थे। स्त्रियां थी उनके लिए पति के अलावा कोई भी पुरुष के रूप में दिखता ही नहीं था। पति की आज्ञा का मन से, वचन से और कर्म से पालन करती थी। राम जी के राज्य में किसी को दंड नहीं दिया जाता था, दंड नाम का प्रयोग ही नहीं होता था। बस ये संत महात्मा जो दंडधारी थे ना, वही दंड का नाम ले लिया, हम दंडधारी सन्यासी दंड लेते हैं। साधु संत हैं वो दंड धारण क्यों करते हैं? सन्यासी लोग दंड धारण करते हैं क्यों? वो दंड होता है अपने ऊपर अनुशासन का प्रतीक। अब दंड धारण कर लिया, किसी को कड़वा नहीं बोलेंगे, वाणी पर संयम और खाने का संयम, सोने का संयम, सब इंद्रियों का संयमन का प्रतीक वो दंड था। भगवान के यहां कोई अपराध होता ही नहीं था, इसलिए दंड देने की बात ही नहीं बनती थी। दंड जतिन कर भेद तह, और भेद कहां होता था? देखो, भेद होता है साम, दाम, दंड और भेद। ये राजनीति में चार चीज होगी। साम, शांति से काम करा लेना, नहीं तो दबा करके काम करा लेने, या कुछ दे लेकर के काम करा लेने, और या आपस में लड़ा करके अपना काम करा ले। ये भेद नीति है। तो साम, दान, दंड और भेद, या फिर नहीं तो अपने दंड करो। तो दंड तो वहां पर केवल यतियों के ऊपर था, और भेद था वो केवल नृत्य कला में ही। भेद नाचना होता है ना, उसमें बहुत लय होती, बहुत तरकीब से नाचा जाता है। ये नृत्य ऐसा होता है जिसमें एडी है ना, वो एडी उठती नहीं है, एडी चलती रहती है, और फिर कहीं कहीं एडी उठी रहती है, केवल पंजे से ही नाचना होता है। कई प्रकार के शरीरों का अंग संचालन होता है, वो अपने को इतना पता नहीं है। पर भेद जो था वो केवल नृत्य समाज, नाचने में कभी हाथ, किस हाथ को यूं रखा, कभी हाथ को यूं रखा, कभी यूं रखा, कभी यूं रखा, कभी यूं रखा, ऐसे ऐसे तरह, कभी ऊंचा ले गए, कभी। ये भेद है। तो ये जितने नृत्य के, ये भेद शब्द केवल नृत्य के अंदर ही काम में लिया जाता था। और जीतो, उसको जीत लो, उसको जीत लो, ये राम जी के राज्य में नहीं होता था। जीतो शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन किसी राजा को जीतो, किसी राजधानी को वश में कर लो, ये बात ही नहीं थी। तो जीतो शब्द का वहां प्रयोग तो होता था, किसके लिए होता था? मन को जीतो। जीतो मन ही सुनिय अस रामचंद्र के राज। जीतो तो भाई अपने मन को जीतो, ऐसे ऐसे जीतने की बात आती थी। प्रकृति, क्या कहना प्रकृति का, ऐसा कोई वृक्ष नहीं जो फलवान नहीं होता था, और बाग बगीचे में पशु पक्षी बड़े अच्छे ढंग से कूदते फांदते और चींचाहट करते, किसी को किसी से कोई भय नहीं होता था। भगवान के राज्य में सिंह और हाथी दोनों एक थान के ऊपर चरा करते थे। वायु बड़ी शीतल, पवित्र और सुगंधित बहा करती। देखो, वायु तीन प्रकार की होती है, तीन विशेषता होती है। एक तो शीतल हो, सुहावनी हो, एक सुगंधी हो, और एक मंद हो, मंद धीरे धीरे चले। तेज चले तो आंधी का रूप ले लेती है। वायु है लेकिन उसमें कोई अच्छी गंध नहीं आ रही है, ऐसा भी नहीं, अच्छी सुगंध और ठंडी और मंद, ऐसे करके शीतल, सुरभि, पवन बह मंदा, ये तीन प्रकार वायु के विशेषण हैं। माने राम जी अवतार तो त्रेता युग में लिए थे गरुड़ जी महाराज, लेकिन वहां अयोध्या में सतयुग छाया हुआ था। त्रेता भाई कृतयुग के करणी, पृथ्वी के यहां जहीं से खोदो वहां पर मणियां ही मणियां मिलती थी। नदियों में कभी पानी सूखता नहीं था। गौओं से आप मन चाहे जितना दूध पी सकते थे। समुद्र है वो राम जी के राज्य में इतने प्रसन्न कि वे अपने अंदर छिपे हुए रत्नों को लाला करके तट पर डाल देते थे। तालाबों के अंदर कमल के फूल एक एक से जुड़े रहते थे, पानी दिखने को नहीं मिलता। ये कमल फूल है, ये उसके पास ही, ऐसे ऐसे। सरदिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। सूर्य उतना ही तपता था जितने से काम होता, जितना तपना चाहिए उतना ही तपता था। हवाई हु ऐसे नहीं होता, अरे आज बहुत गर्मी, शाम को भी है रात को भी गर्मी, ऐसा नहीं होता था। बदलों से मांगे तब पानी मिलता था। ऐसे रामचंद्र जी के राज्य का वर्णन करने के बाद अब कहते हैं राम जी क्या करते थे और सीता जी क्या करती थी। राम जी महाराज थे, वे खूब अश्वमेध यज्ञ किए, खूब उन्होंने दान पुण्य किया। भगवान के दान पुण्य का अर्थ कोई स्वर्गादि की प्राप्ति तो हो नहीं सकता। भगवान के दान पुण्य का अर्थ यही था कि लोग ऐसे दान पुण्य की तरफ चले। अब सीता जी की बात बताता हूं। सीता जी हरदम पति के मन के भाव को ताड़ने के लिए, समझने के लिए तैयार रहती थी। वो कभी अपनी वाणी से अपने पतिदेव के सामने कठोर वचन नहीं बोलती थी। सीता जी के यहां खूब सेवक लोग थे, परंतु सीता जी भगवान की सेवा में, भगवान के महल के प्रत्येक कार्य में स्वयं अपने हाथ से ही कार्य करती थी, काम करने में जी नहीं चुराती थी और आज्ञा भी नहीं देती कि नौकरों तुम हमारे कमरे में ये ऐसा कर दो वैसा कर दो। निज कर गृह परिचर्या करई। असली सेवा क्या होती है कि जिससे पति प्रसन्न हो जाए वो असली सेवा होती है। इधर सासुओं का क्या व्यवहार था कि सासुओं का सीता के प्रति बड़ा स्नेह का बर्ताव था और सीता जी सभी सासुओं की विशेष सेवा करती थी। सीता जी के मन में ये कोई मान मद नहीं था कि मैं राम जी की पत्नी हूं, मैं अयोध्या की महारानी हूं, मैं अपने सासू की स्वयं क्या सेवा करूं, यहां तो बहुत से सेवक है, ऐसा कोई अभिमान नहीं। कौशल्यादि सासु गृह माही सेवई सबनी मान मद नाही। देखो किसी भी उत्तम से उत्तम स्त्री का व्यवहार सासू के साथ देखा जाता है कि सासू के साथ कैसा व्यवहार है। पति के अनुकूल रहने वाली बहुत सी मिल जाएंगी, पर ये हमारे पति की माँ है ऐसा समझ करके सासू को आदर देने वाली स्त्रियां, माताएं, बहनें बहुत कम होती है। गोस्वामी जी महाराज संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सुधारने के लिए और सब बहुओं को सासुओं की विशेष सेवा के लिए चौपाई बोले हैं कि सीता जी ने कौशल्या आदि समस्त सासुओं का इतना अच्छा मान रखा, इतनी अच्छी सेवा की कि सीता जी में कोई मान मद नहीं था। ऐसे कहते कहते गोस्वामी जी ये भी बोलते हैं कि ये सीता जी इन्हीं गुणों के कारण से ब्रह्मा है, शंकर है इत्यादियों के द्वारा पूजनीय बनी थी। जिन सीता जी का थोड़ा सा कृपा कटाक्ष पाने के लिए देवता रात दिन लालायित रहते थे, एक बार सीता हमको कृपा से देख ले, मुस्कुरा करके देख ले, आशीर्वाद देके देख ले कि नहीं देवता हो मेरा आशीर्वाद है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, ऐसा भी कृपा से बोल दे तो भी हम निहाल हो जाए। परंतु ऐसी कृपा कटाक्ष देवताओं को मिलना बड़ा मुश्किल था। वे सीता जी राम पदारविंद रति करति सुभावई खोई। वे सीता जी भगवान के चरणारविंदों में इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती, अपना सब कुछ खोकर के भी रामचंद्र जी महाराज के चरणों में प्रेम करती थी। यह है सीता जी का व्यवहार। अब राम जी के भाई थे वे सेवई सानुकूल सब भाई, तीनों भाई भगवान का बहुत ध्यान रखते थे और वो प्रतीक्षा करते रहते थे कि भाई साहब हमको कुछ कहें, कबहु कृपाल हमई कछु कहें। कभी कभी किसी को कह देते भगवान शत्रुघ्न भैया ये काम कर दो, शत्रुघ्न जी निहाल हो जाते। और राम जी महाराज भाइयों पर बड़ा प्रेम करते थे, बैठ करके सब आपस में शास्त्र की चर्चा करते थे। भगवान श्री राम का ये व्यवहार लोगों को बहुत अच्छा लगता था। रात दिन वे नगर के नर नारी विधाता से यही प्रार्थना करते रहते थे कि हे विधाता, एक दिन अयोध्या तो छूटेगा, एक दिन अयोध्या तो छूटेगी, एक दिन ये सब शरीर आदि का वियोग तो होगा, पर हे विधाता इतना काम कर देना कि भगवान के चरणों से हमारा प्रेम न छूटे, सब कुछ छूट जाए, प्रेम न छूटे, इतनी हमारे पर कृपा करना। ऐसी अयोध्या की प्रत्येक नर नारी की भावना थी। सीता जी के दो बेटा हुए। गरुड़ जी महाराज आप तो जानते हो, वेद पुराणों में भी कहा हुआ है, एक का नाम लव, एक का नाम कुश था। लव और कुश छोटे छोटे ऐसे थे, उनको आपाद मस्तक देखो, सिर से लेकर पैरों तक देखो, एक जैसे राम जी के एक जैसे रूप वाले। तो राम जी के दो लड़का भरत जी के, दो ही लड़का शत्रुघ्न जी के और दो ही लड़का लक्ष्मण जी के, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे। भगवान वहां पर केवल अब अयोध्या में प्रेम की लीला के लिए बैठे, खूब प्रेम पूर्वक रहते थे। भगवान की अब दिनचर्या बताते हैं। प्रातःकाल भगवान माँ जी थे, मोबाइल रखो गए, घंटियां तो कठे बाजरी है, सरू करी मज्जन। प्रातःकाल सरयू में स्नान करने के बाद ध्यान से सुनना, भगवान सरयू नदी के किनारे विराजमान होते, वहां पर अच्छे अच्छे संत ब्राह्मण लोग आकर के बैठते और वेद पुराण वशिष्ठ बखा नहीं, वेदों की पुराणों की इनकी सबकी कथा वशिष्ठ जी महाराज सुनाते थे। राम जी महाराज ऐसे प्रेम से सुनते थे जैसे वो कुछ जानते ही नहीं हो। लेकिन राम जी महाराज के लिए सुनई राम यद्यपि सब जाने, लेकिन ऐसे सुनते जैसे वो नई बार सुन रहे हो, एकटक ध्यान से सुनते थे। खूब आराम से सत्संग करने के बाद फिर भगवान अपने भाइयों के साथ बैठ करके भोजन करते थे और माताएं उनको भोजन परोसती थी। देखो सेठ जी ने एक जगह लिखा कि घर में भोजन करो ना तो स्त्री का तो बनाया हुआ हो और माँ का परोसा हुआ हो, स्त्री बनाए और माँ परोसे। तो कहा कि माँ बनावे क्यों नहीं, अरे माँ बूढ़ी हो गई, माँ रोटी बनाएगी, रोटी तो स्त्री बनाएगी, स्त्री तो रोटी बनाए और माँ हो वो रोटी पुरसे, वो भोजन बहुत अमृत होता है। इधर राम जी महाराज भाइयों के साथ भोजन करते तो देख ही सकल जननी सुख भरई, सब आनंद में डूब जाते थे। भोजन वगैरह करने के बाद फिर वे बगीचे में जाते। बगीचे में राम जी महाराज नहीं जाते, भरत शत्रुघ्न ये दोनों भाई और हनुमान जी को लेकर जाते। हनुमान इधर आओ, चलो बगीचे में चलते हैं, थोड़ा एकांत में चलते हैं। हनुमान जी बैठ जाते, भरत जी और शत्रुघ्न जी बैठ जाते, लक्ष्मण जी कहाँ गए? लक्ष्मण जी राम जी के पास रहते। लक्ष्मण जी को क्यों नहीं बुलाया? कि लक्ष्मण जी को बुलाना नहीं था। क्यों? अब बता रहे। हनुमान जी को बुलाए और के हनुमान तुम हमको बताओ कि तुम्हारा और राम जी का पहला ही पहला मिलना कहाँ हुआ? फिर वहां से लेकर के या अयोध्या तक आए ना, ये बताओ हमको, कथा सुनाओ। बूझई बैठी राम गुन गाह, कह हनुमान सुमति अवगाह, सुनत विमल गुन अति सुख पावई, बहुरी बहुरी करी विनय कहावई। हनुमान एक बार और सुनाओ। अब हनुमान जी महाराज भी कथा सुना तो देखो वहां ऐसे भगवान बैठे हुए थे, उस समय भगवान की ये मुद्रा थी, मुझे इस प्रकार से अंगूठी दी, अंगूठी देते समय भगवान ऐसे बोले, भगवान ने मेरे कंधे पर हाथ रख करके, ये ऐसी ऐसी बातें जब वो सुनाते थे तो वो बहुरी बहुरी करी विनय कहा वही। और सुना हनुमान, और सुना, दोबारा सुना इसको, दोबारा सुनाओ। ऐसे वे भगवान का चरित्र सुनते थे और भरत जी और शत्रुघ्न जी तृप्त नहीं होते थे। धीरे धीरे ये बात भरत और शत्रुघ्न हनुमान के द्वारा महल के बाहर गई। बाहर गई तो अयोध्यावासी इन चर्चाओं को पहले तो बड़े प्रेम से सुनते, जो भी सुनाता फिर वो स्वयं ही घर घर में कहने लग जाते थे, रामचरित पावन विधि नाना, पावन रामचरित्र खूब नाना प्रकार से लोग गाते थे, नर और नारी राम गुण गा नहीं, और करही दिवस निसी जातन जा नहीं, रात दिन यही धंधा, उनको कई काम छूट जाते थे। अयोध्या के लिए क्या कहे गरुड़ जी महाराज, इसकी महिमा तो शेष और शारदा भी नहीं कह सकते, सहस शेष नहीं कह सकें, जयेंद्र पर राम विराज। और हम आपको विशेष बात बताएं, क्या? अयोध्या के अंदर नारद आदि सनकादि ऋषि, कभी कोई ऋषि, कभी कोई ऋषि, कभी कोई महात्मा, कभी किस देश का, कभी किस देश का, दिन प्रति सकल प्रतिदिन आते रहते थे। और अयोध्या को देख करके उनका बैराग्य ढीला हो जाता था, देखो और इतनी अच्छा है मैं, इतना अच्छा, अरे मणियों का, अरे मणियों की लड़े, अरे बाबा जी आपको मणियों की लड़ों से क्या मतलब है, आप तो पर्वत के पत्थर और मणि को एक जैसा मानते हो, कि सब जगह तो मान लेते हैं पर राम जी के महल में, राम जी की अयोध्या में जो मणियां है ना, इनको देख करके हमारा भी जी ललचाता है कि कितनी सुंदर मणियां है। नए के नगर विराग बिश्रावाई, जात रूप मणि रचित अटानी, राना रंग रुचिर कच धारी, ऐसे ऐसी मणियां देखते थे, चारों तरफ बड़े सुंदर सुंदर परकोटे, परकोटों के ऊपर कंगूरे बने हुए, ऐसा लगता था कि अमरावती यहां आकाश से देवलोक से आकर बस गई हो। कैसे विचित्र विचित्र वहां पर कांच की ढलाई, जिसको देख करके मुनिवर मन नाचा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन नाचता था, यू प्रतिबिंब में देखते कैसे कैसा प्रतिबिंब, नाचने लग जाते हो। ऐसे ऊंचे ऊंचे महल जैसे आकाश को वो छू लेंगे, ऐसा सुंदर कोरणीदार किया वहां पर झरोखा, उस झरोखे में से स्वयं तो सबको देख ले और उधर से कोई दिखे भी नहीं, बार वाला कोई नहीं देखे, स्वयं सब देख ले वही। प्रत्येक घर के अंदर मणियों का प्रकाश होता था, बैटरी नहीं होती थी और दीपक हरदम थोड़ी, मणियों के प्रकाश से घर जगमगाते रहते थे। मणि दीप राजई भवन ब्राजई, देहरी विद्रुम रची, और क्या वृक्षों में वो लटका देते, मणि लटका देते, प्रकाश हो जाता था। ऐसा बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर अयोध्या का महल, और जो भगवान की वहां चित्रशाला थी, ऐसी चित्रशाला प्रत्येक घर में, प्रत्येक महल में, वो वास्तव में वहीं पर ही है। ऐसी चित्रशाला दूसरी जगह नहीं है जो सबका मन चुरा लेवे। बाग बगीचा, बाग बगीचा कैसा कि जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष लताएं, पक्षी बड़ी सुंदर बोल बोले, मोर, हंस, सारस, पारावत, वे ऐसी मीठी वाणी बोलते हैं, कभी कभी उड़ उड़ करके महलों पर आकर के बैठते हैं और फिर वापस दौड़ करके तालाबों में आकर के बैठते हैं, तो वहां अपनी प्रतिबिंब परछाई देखते हैं तो मोर नाचते हैं तालाबों के पास में। तोता है, मैना है, इनको छोटे छोटे बच्चे पढ़ाते हैं, ए तोते कहू राम रघुपति जन पालक, तुम राम का नाम लो, हे रघुपति आप जन की रक्षा करने वाले हो, ऐसे ऐसे बोलो। तो वो तोता वैसे रटे हुए बोलते थे। बाजार ऐसा था कि वहां पर वस्तु इतनी पड़ी कि लोग बिना मूल्य के लेते ही नहीं थे। वस्तु पड़ी रहती, खुली पड़ी रहती, पर मूल्य दिए बिना नहीं लेते थे। वहां बजाज भी थे और शराब भी थे, तो बैठे बजाज शराब बनिक अनेक मनहु कुबेर थे। तो बजाज और शराब, किसी आदमी ने कहा कि बजाज तो आ गए महेश्वरी, शराब आ गए अग्रवाल, कि वहां राम जी के जमाने में भी महेश्वरी अग्रवाल दोनों का वहां पर व्यवसाय चलता था। बैठे बजाज शराब बनिक अनेक मनहु कुबेर थे, कुबेर जैसे धनी आदमी। सरयू नदी का पाट बहुत विशाल, जैसे मां का हृदय विशाल होता है सब पुत्रों के लिए, ऐसे सरयू का विशाल पाट। उस सरयू के नदी के किनारे, सरयू नदी पर बड़े सुंदर घाट बने हुए, उन घाटों पर किंचन मात्र भी गंदगी नहीं, कोई भी कीचड़ तक नहीं, वहां पर खूब आराम से पशु पक्षी भी जल पी सकते थे। कितनी मर्यादा की बात तुलसीदास जी महाराज दिखते हो कि वहां स्त्रियों का घाट अलग से बना हुआ था जहां पुरुष स्नान नहीं कर सकते थे। पनिघट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करही अस्नाना, राजघाट सब विधि सुंदर बर, राजघाट बना हुआ, प्रत्येक तीर के ऊपर देवताओं का मंदिर बना हुआ, और सरयू नदी के किनारे उदासी महापुरुष, ज्ञानी सन्यासी ऋषि मुनि ज्ञान में रत हुए मस्त रहते थे। तीर के ऊपर जगह जगह तुलसी का पौधा था, ऋषि मुनि अपने हाथ से लगाते थे। अयोध्या की शोभा देखने के लिए कई बार देवता लोग ऊपर से आकाश से आते देखते और अयोध्या को देखने से मस्त हो जाते थे। वहां की बावड़ियां, वहां के तालाब, वहां जो पगोथे बने हुए थे वो मणियों के बने हुए बड़े सुंदर, वहां के फूलों के ऊपर भौरे खूब मीठा गुंजन करते थे, मानो आने जाने वाले राहगीरों का वो विश्राम स्थल का संकेत करते हूं बोलते ना वो भौरे, कहे थके हुए हो आओ यहां पानी पी लो, यहां विश्राम कर लो, बैठ जाओ। इस प्रकार रमानाथ भगवान जहां राजा हो वहां अनिमादिक सुख संपत्तियां रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लोग आपस में बात करते कि देखो अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान का भजन करना है, भगवान के दर्शन तो करते हैं, दर्शन करने पर भी भगवान को हृदय में रख करके उनका गुणगान, उनका भजन करना चाहिए। केवल दर्शन से नहीं, भगवान का भजन से कल्याण होता है। देखो सुनो, ये काल रूपी सर्प है, ये सबको खाए जा रहा है, इसलिए निष्काम होकर ममता का त्याग करके भगवान के चरण कमलों में वंदना करो, ऐसे लोग बात करते थे। भगवान श्री राम और सीता जी इन दोनों का भजन क्यों नहीं करते भाई? संसार में जितनी लौकिक वासनाएं हैं ये सब वासनाएं भगवान सीताराम का नाम लेने से नष्ट हो जाने वाली है, ऐसे ऋषि मुनि आदि सब बोला करते थे। एविरी नगर नारी नर करही राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान। भगवान रूपी सूर्य जब उदित हो गए तब कयों को तो शोक हो गया और कयों को सुख मिला। सूर्य भगवान उदित होते हैं ना तो कयों को बड़ा घाटा लगता है, कयों को बड़ा लाभ होता है। कहते घाटा किन को लगता है? सबसे बड़ा घाटा तो रात को लगता है, रात खत्म ही हो जाती है सूर्य उदित होते हैं। तो भगवान का यश रूपी सूर्य जब उदित हुआ तो अविद्या रूपी रात खत्म हो गई, अविद्या की रात खत्म। और सूर्य उदित होता है तो नुकसान किसको होता है? उल्लुओं को होता है। उल्लू दौड़ नहीं सकता, सब जाकर इधर उधर छिप जाते हैं। ऐसे ही राम जी का प्रताप रूपी सूर्य उदित हुआ तो पाप रूपी उल्लू छिप गए, उनका नुकसान हो गया बेचारे पापों का। सूर्य उदित होता है तो कमलनी है वो कमलनी संकुचा जाती है, चंद्रमा वही खिलती है। ऐसे ही काम और क्रोध है, ये जो कैरव है ये संकोच में पड़े संकुचा जाते हैं। भगवान का यश रूपी सूर्य उदित हो जाने पर काम क्रोध यूं दब से जाते हैं। और स्वभाव काल गुण कर्म ये सब चकोर की तरह से चंदिया जाते हैं। चकोर होता है वो रात्रि में उड़ता है, दिन में एकदम बैठ जाता है। चोर होता है वो छिप जाता है। ऐसे ही मत्सर मान मोह मद चोरा, ये मत्सर, मत्सर माने आपकी बड़ाई हो रही है और मेरे सामने आप कर रहे हैं और मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये मात्सर्य दोष है इसलिए अच्छी नहीं लग रही है। नहीं तो आपकी बड़ाई हो तो मुझे क्यों नहीं अच्छी लगे, लगनी चाहिए। वो मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती है कि मेरे अंदर मात्सर्य दोष है। और बड़ा इतना ये गहरा दोष होता है कि बराबर के हैं हम, बराबर वालों में साथ रहते हैं सब ठीक है, लेकिन आपने यदि मेरे साथ वाले की प्रशंसा ज्यादा कर दी मेरी कम की तो मेरे अंदर खटका हो जाएगा। इसलिए मत्सर दोष ये बहुत भयंकर होता है। संत कहते थे कि जैसे मच्छर का डंक है ये भयंकर होता है, मच्छर बहुत छोटा लेकिन डंक बड़ा भयंकर, ऐसे ही मात्सर्य दोष होता है ये भी जो है बहुत भयंकर है। साधना में बहुत दूर तक चलता है, और दोषों का तो जल्दी निराकरण हो जाता है पर मात्सर्य दोष है ये दूर तक चल सकता है। समझ में ही नहीं आएगी दोष है क्या, दोष है तभी तक टिकता है जब तक हमारे समझ में नहीं आता है। समझ में आ जाए फिर दोष टिकेगा नहीं, उसकी जड़ उखड़ जाती है। जैसे वृक्ष है, अब आज इस वृक्ष को आज उखाड़ देवे अपने जड़ से ही तो उखाड़ कर पटक दिया तो टहनी कई दिनों तक हरी रहेगी। क्योंकि साहब इसको उखाड़ दिया फिर भी हरी क्यों है? कि भाई इसके अंदर अभी रस है ना, ये हरा है, लेकिन थोड़े दिनों में ये अपने आप सब सूख जाएगा। ऐसे ही जब तक दोष हमारे जानकारी में नहीं आते तब तक तो देखो दोष रहेंगे, और जब जानकारी में आ जाए दोष तो फिर वो दोष को दोषों की जड़ कट जाती है। देखो भलाई प्रभु कटे हुए वृक्ष के समान ही रहते हैं। तो राम जी के राज्य में मत्सर मान मोह और मद ये चोर के समान रहते थे। राम जी का जब सूर्य रूपी राम जी का प्रताप रूपी सूर्य उदित होता था तो धर्म रूपी जलाशय में ज्ञान वैराग्य रूपी कमल खिल जाते थे, ये प्रसन्नता होती थी। बताया ना कि राम जी का सूर्य राम जी का प्रताप रूपी सूर्य उदित होने पर प्रसन्नता किनको और शोक किनको, तो पहले शोक वाला प्रसन्नता वाला प्रसंग बता। सुख है, संतोष है, वैराग्य है, विवेक है, ये सब शोक रहित होकर के और अनेक रूप में खिले रहते थे कमल की तरह से। एक बार की बात है, भगवान अपने साथियों के अपने भाइयों के साथ विराजमान थे अपने बगीचे में। सब भाई बैठे हुए थे, अकस्मात वहां सनकादि ऋषि आए। सनकादि ऋषि तो हरदम ब्रह्म ज्ञान में लीन रहने वाले। देखो गरुड़ जी, ये सनकादि क्या ना, दिखने में तो छोटे से दिखते हैं, 5 वर्ष के 6 वर्ष के, पर ये बहुकालीन बहुत समय के हैं। तो फिर ये बड़े क्यों नहीं होते, छोटे बच्चे ही क्यों रहते हैं? ये दुनिया को बताने के लिए कि बच्चे की तरह रहो, इस संसार में बड़ा होकर मत रहो, बच्चा होकर रहो। बच्चा होकर रहोगे तो सबका प्यार मिलेगा, निर्विकार रहोगे और जो है कल्याण हो जाएगा। देखत बालक बहुकालीना, इतने विद्वान मानो चारों ही वेद की साक्षात मूर्ति हो। और इनका व्यसन क्या है, किसी का क्या व्यसन, किसी का क्या व्यसन, इनका व्यसन है लत। व्यसन माने लत, लत क्या थी, भगवान का जहां भी चरित्र वहां जाके सुने, जहां भी चरित्र होता वहां सुने। तो दर्शन तो कम करते थे, चरित्र ज्यादा सुनते थे सनकादि ऋषि। ये सनकादि ऋषि सुनो भवानी, एक बार अगस्त ऋषि के वहां गए और वहां जाकर कथा सुनते सुनते मस्त हो गए। अगस्त जी ने क्या हुआ, क्या हुआ ऋषियों, क्या हुआ, क्या क्या हुआ, बस एक बार राम जी से मिलने की बड़ी इच्छा। अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अयोध्या जाओ। अयोध्या का, अच्छा राम कथा मुनिवर बहु बरनी। अगस्त ऋषि ने उनको खूब बड़े प्रेम से राम कथा सुनाई और देखी राम मुनि आवत, तो वहां से सीधे भगवान के पास अयोध्या में आए। अयोध्या में आए तो भगवान ने उनका बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किया। तीनों भाइयों ने प्रणाम किया, हनुमान जी ने प्रणाम किया। हनुमान जी साथ में सेवा में रहते थे, पर वो प्रणाम करो चाहे करो, वो चारों के चारों राम जी की छवि देखकर मुग्ध हो गए। क्या घुंघरालू घुंघरालू, बड़े सुंदर बाल है, क्या भगवान का श्यामल रूप है, नेत्र देखो एकदम ताजा खिला हुआ कमल होता हो, ऐसी सुंदरता तो संसार को संसार से मुक्ति देने वाली होती है। एकटक रहे निमेषण लावी, देखते रहे आग यूं पलका भी नहीं मारा और भगवान के सामने सिर भी झुकाते हैं। भगवान ने उनकी दशा देखी, अरे इनके तो आंखों में पानी आ रहा है प्रेम के कारण। भगवान के उनका हाथ पकड़ा, आइए आइए आइए, ऋषिवर यहां पर विराजमान हुए। फिर उनको बैठाया, बैठा करके भगवान कहने लगे, सुनो हे मुनीश्वर, आज मैं धन्य हो गया। हमारे शास्त्रों में कहा है कि संत महात्मा के दर्शनों से अपने आप पाप समुदाय नष्ट हो जाता है, अपने आप ही। बड़ा भारी कोई भाग्य होता है तो सत्संग मिलता है, बड़ी भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बिना किसी प्रयास के संसार की आसक्ति की निवृत्ति हो जाती है। संग का बड़ा असर पड़ता है महाराज, सत्पुरुषों का संग होता है वो मोक्ष करने वाला होता है। और कामी पुरुषों का संग होता है वो संसार में ले जाने वाला होता है। ऐसा संतों ने कहा है, कवियों ने कहा है, महा महा विद्वानों ने, पंडितों ने कहा है, पुराणों ने कहा है, सब ने ये बात कही है। तो मनुष्य को अपना संग चुनना चाहिए कि अच्छा संग, हम ये संग लेवे कि ये संग लेवे। वे चारों के चारों सनकादि ऋषि पुलकित वगैरह, महाराज आप कुछ भी कहो, हम तो आपके दर्शनों से बड़े आनंदित हो गए। एक भी आप हो और अनेक भी आप हो, जितनी मिठाइयां हैं सब मिठाइयों में एक ही खांड है। तो दिखती अलग अलग है लेकिन है एक ही खांड। एक भी आप हो और अनेक भी आप हो। आप निर्गुण हो और आप गुणों के सागर हो। आप आनंद के समुद्र हो और चतुराई के भंडार हो। हे प्रभु, आप पृथ्वी को धारण करने वाले हो। ये पृथ्वी तो समुद्र में डूब जाती है, आपने धारण किया है इसको। देखो धारण करना कैसे, कि पृथ्वी के चारों तरफ पानी है, यूं पानी पानी। एक कटोरा ले, इतना सा कंकर डालो पानी में, टप नीचे चला जाएगा वो कंकर। क्यों चला जाए? और इतनी विशाल पृथ्वी है, चारों तरफ पानी पानी है। पृथ्वी की सतह से ऊंचा पानी है, ऊंचा, पृथ्वी तो नीचे है और सतह ऊपर पानी पानी, लेकिन फिर भी भगवान डूबने नहीं देते, बताओ। इसलिए भगवान पृथ्वी के धारण करने वाले। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्य है मोजसा, आप सबको मान प्रदान करने वाले हो, तत्वज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सबके हृदयों में रहने वाले हो। बस आप राग द्वेष हर्ष शोक रूपी द्वंद्व है इसका भेदन करने वाले हो। हे महाराज, आप हमारे हृदय में बस जाओ। नेत्रों से देखने में क्या है, आप हमारे हृदय में बस जाओ। अब हृदय से, हृदय के आंख से आपको देखें, वो दर्शन है खास। देखो ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बोलते हैं। हृदय में आप बस जाओ तो हृदय की आंख से हृदयस्थ आपके स्वरूप को देखें, ये असली दर्शन होता है। हे महाराज, हमको आप भक्ति प्रदान कीजिए। जिस प्रकार से कामधेनु के वहां जाने पर जो जाए जितना चाहे उतना देने वाला, कल्प वृक्ष सब कुछ देने वाला है, ऐसे महाराज आप शरणागत की सब इच्छा पूरी करने वाले हो। शरणागत की इच्छा क्या होगी? शरणागत की इच्छा लौकिक इच्छा नहीं होगी। देखो विभीषण है, ये भगवान के शरणागत हुआ तो भगवान ने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है, कि महाराज पहले तो मेरे मन में इच्छा थी लेकिन शरणागति के बाद इच्छा नहीं रही। उर कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु पद प्रीति सरित सोबै, आपके प्रेम के अंदर सब वासना हमारी खत्म हो गई। तो शरणागत के कोई इच्छा नहीं होती है, फिर कैसे कह दिया कि शरणागत की इच्छा पूरी करने वाले हो? वो शरणागति के संबंध में जो कुछ इच्छा होती है ना, वो पूरी करते हैं भगवान। शरणागति का जो साधन है उसमें वो किस प्रकार की शरणागति चाहता है, ये बात भगवान पूरी करते हैं। लौकिक इच्छा उसमें नहीं रहती। सबको तारने वाले हो प्रभु, आपके चरणों के तो अज और शंकर भी वंदना करते हैं, ब्रह्मा और शंकर भी वंदना करते हैं। ऐसे बार बार भगवान की स्तुति गाई, प्रेम सहित वंदना की और सनकादि ऋषि वहां से ब्रह्म भवन में चले गए, ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक क्यों गए यहाँ? यहाँ आप उत्तरकांड में देखेंगे प्राय सनकादि है तो क्या, नारद जी भी कभी आएंगे तो क्या, और आते हैं बार बार आते हैं, दर्शन करते हैं और ब्रह्मलोक में जाते हैं। सनकादि लोग सनविदि ये क्यों जाते हैं वहां? वहां इसलिए जाते हैं कि वो ब्रह्मा जी को जाकर यहाँ की सब घटना सुनाते हैं। सनकादि ब्रह्मा जी के बेटा रह गए, पिताजी 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 क्या हुआ बेटा? बस आज हम अयोध्या गए, भगवान के ऐसे ऐसे दर्शन किए। ब्रह्मा जी खुश हो जाते, वो भी वहां पर बैठे ध्यान करते। ऐसे जो है सनकादि ब्रह्मलोक में चले गए। सब भाई वहां पर बैठे हुए हैं। अब हनुमान जी महाराज आगे नया प्रश्न राम जी के सामने भरत जी की तरफ से रखेंगे, और फिर राम जी का और भरत जी का बहुत दूर तक संवाद चलेगा। जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय
सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय सीताराम, सीताराम,
सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय सीताराम, 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 जय सीताराम, ओ जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय सीताराम, 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 जय सीताराम, ओ जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय सीताराम, 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 जय
सीतावर राम चंद्र की
जय।
मोर मुकुट वंशी वाले की
जय।
उमापति महादेव की
जय।
पवन सुत हनुमान की
जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय।
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय।
भक्तवत्सल भगवान की
जय।
आनंद कंद भगवान की जय।